गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कोरोना जैसी अप्रत्याशित वायरल डिजीज़ के कारण हम लोगों की कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, इसका हमें खेद है। लेकिन छात्रहित को देखते हुए छात्रों की समस्याओं का निदान करने का प्रयास महाविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम आप लोगों को पिछली कक्षा के दौरान कल्चर का जो एक पार्ट था, भारतीय फिल्म, उस पर चर्चाएं अधूरी रह गई थी। आज हम लोग उसी कक्षा को, अधूरी कक्षा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम आप लोगों को भारतीय फिल्म के बारे में एक सामान्य परिचय देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फिल्म एक मनोरंजन का सशक्त माध्यम है और वर्तमान समय में भारत देश फिल्मों का एक बहुत ही बड़ा उत्पादन करता और अपने व्यावसायिक स्तर को बढ़ाने के लिए अपने देश से बाहर भी फिल्मों का प्रसारण करता है, जिसके द्वारा न केवल दूर दूर तक फैले भारतीय या ऐसे लोग जिनकी फिल्म में रुचि है अपना मनोरंजन करते हैं, और इसके साथ साथ भारतीय भाषा का, जैसे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होता है, विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। और उस समय यानी वर्तमान समय में भारत की जो जो सोच है साहित्य के माध्यम से फिल्मांकन किया जाता है, और इस फिल्मांकन का प्रचार और प्रसार दूसरे देशों में किया जाता है। जहाँ तक कि हिंदी भाषा की बात है या हिंदी भाषा में फिल्मों का निर्माण सबसे ज़्यादा मात्रा में भारतवर्ष में किया जाता है, इसके साथ साथ अन्य भाषाएं जैसे तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी या बंगला, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भी फिल्म का निर्माण होता है। अब आते हैं इस सामान्य पर चर्चा के बाद, हम फिल्म को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फिल्म की कोई एक ऐसी औपचारिक डिफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि जब भी कोई कलाकार किसी कथनांक को अभिव्यक्ति के साथ यानी डायलॉग के साथ उसका मंचन करता है अपने हाव भाव के साथ, तो नाट्य कला की ऐसी मुद्रा को हम फिल्म का रूप मान सकते हैं या फिल्म कहते हैं। अब हमारे सामने जो अगला एस्पेक्ट है वह यह है कि भारतीय फिल्म का विकास या भारतीय फिल्म का इतिहास। आप सभी लोग जानते ही हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने फिल्म के निर्माण, इसकी तकनीक और प्रचार प्रसार में एक क्रांति ला दी, जिसका कारण यह है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जब फिल्मों का निर्माण प्रारंभ हुआ तो फिल्मों की दशा ऐसी नहीं थी जैसा कि वर्तमान स्वरूप में है। पहले फिल्में बायोस्कोप के रूप में दिखाई जाती थी, उनका वाचन अलग रूप से होता था और चित्रांकन या फिल्म अलग रूप में दिखाई जाती थी। संक्षेप में हम यह कहें कि डायलॉग और चलचित्रों में कोई मेल नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक आविष्कारों ने गति पकड़ी और चलचित्रों का और आवाज़ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन ने चलचित्र की दुनिया में एक क्रांति ला दी। अगर हम फिल्म निर्माण के पहले चरण की बात करें तो प्रथम चरण में फिल्मों का निर्माण जो होता था वह पौराणिक कथाओं पर आधारित होता था, अर्थात इस फिल्मांकन में किसी पौराणिक कथा का जो नायक होता था उसको हीरो के रूप में पर्दे पर प्रस्तुत किया जाता था और जनता को इस फिल्मांकन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता था कि उसके जो नैतिक मूल्य हैं, चारित्रिक मूल्य हैं या जो आदर्श समाज का जो मूल्य है उन मूल्यों को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था और आशा करती थी कि आम जनता भी इन मूल्यों का अनुकरण करे। दूसरा दशक आता है जब समाज के उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग के बीच का एक ऐसा सामाजिक संघर्ष जिसमें एक तरफ तो विभिन्न प्रकार के साधनों से संपन्न एक एलिट वर्ग जो कह सकते हैं कि भोग विलासिता या सुविधा संपन्न जीवन जीता था और दूसरी तरफ समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग जो अपनी बुनियादी समस्याओं से संघर्ष करता था, उनके बीच समाज में क्या स्थिति उत्पन्न होती थी, क्या सामाजिक कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट से जो सामाजिक स्थितियां उत्पन्न होती थी उसका चित्रण किया गया है। उदाहरण के रूप में आप मदर इंडिया जैसी फिल्म का चलचित्रण दे सकते हैं जिसमें दिखाया गया है किस तरह एक माँ अपने दो बेटों के साथ अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए जमींदार से न केवल संघर्ष करती है बल्कि अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करती है। दूसरे चरण के बाद जब हम भारतीय इतिहास के सिनेमा इतिहास के अगले चरण में आते हैं तो यहाँ पर चलचित्र का उद्देश्य में मूलभूत परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जैसे कि अब समाज की कुछ बुनियादी समस्याएं पूरी हो गई हैं लेकिन सभी समस्याएं पूर्ण नहीं हुई हैं, तो समाज का एक वर्ग जहाँ निचले पायदान से उठ करके उच्च स्तर तक पहुँचना चाहता है लेकिन छुआछूत, जात पात या धर्म जैसी बेड़ियाँ उसके आड़े आती हैं, तो वहाँ पर उस नायक की गुणवत्ता या शैक्षिक योग्यता या व्यक्तिक योग्यता को महत्व न दे करके ऊंच नीच, जात पात जैसे मूल्यों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब हम इस से कुछ आगे बढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि खास करके जो 90 और 2000 के दशक 1990 और 2000 के बीच आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर ऐसे नायकों का उदय होता है जो समाज में एकदम हिंसा के द्वारा या अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के द्वारा अपनी इच्छाओं के द्वारा वे समाज के पूर्व स्थापित मूल्यों को नष्ट करके एक नए मूल्यों की स्थापना करते हुए समाज से संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। फिर समाज विकास के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब ऐसे मूल्यों की बात की जा रही है जो कि आपको एक समायोजन के साथ आगे बढ़े और नवीन जो कला प्रौद्योगिकी और बदले हुए समाज का जो रूप है वो दिखाई देता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। यदि हम सिनेमा जगत के वर्तमान इतिहास की बात करें या वर्तमान समय की बात करें तो इस दौर में जितने भी फिल्में बन रही हैं या व्यावसायिक स्तर पर उनका निर्माण किया जा रहा है उन फिल्मों में अक्सर जो फिल्मांकन का स्वरूप है उनमें कला साहित्य या सामाजिक जैसे मूल्यों पर ज़्यादा बल न दे करके सभ्य समाज या सांस्कृतिक समाज को मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा भारतीय समाज उसका इतना एडिक्ट या आदि होता जा रहा है कि वह इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि यदि उसे आने वाली या आगामी फिल्मों में अगर पिछली फिल्म से ज़्यादा फुहड़ता या नग्नता नहीं परोसी जाती है फिल्म के माध्यम से तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका मनोरंजन ही नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ फिल्में कला साहित्य या समाज को एक नवीन दिशा देने का माध्यम होना चाहिए, वे समाज को एक ऐसे फिक्शन का एडिक्ट बना रही हैं जो न केवल वयस्कों के लिए बल्कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है खास करके युवा वर्ग और किशोरा वर्ग पर इसका अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि जो भी स्क्रिप्ट राइटर या कथनांक के लेखक हैं उनको फिल्म के निर्माताओं को या जो भी इस फिल्म को आगे बढ़ाने की या पास करने की जिम्मेदारी भारतीय सेंसर बोर्ड को दिया गया है उसका यह नैतिक सामाजिक दायित्व है कि वह लाभ के लिए न काम करें बल्कि हमारे देश की सामाजिक नैतिक और आदर्शवादी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दें जो समाज के लिए एक मील का पत्थर हों, समाज के लिए आदर्श बने, समाज में एक नवीन मूल्य की स्थापना करें, न कि केवल लाभ कमाएं। इस चर्चा के बाद इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस विषय वस्तु के कुछ सकारात्मक पहलुओं, या हम कहें कि फिल्म के निर्माण से समाज को या व्यक्ति को कौन कौन से लाभ हैं, या फिल्म के कौन कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। तो मैं जैसा कि सामान्य परिचय में भी आपको बताया कि फिल्म का मुख्य उद्देश्य है जनता, ये विशेष करके दर्शकों का मनोरंजन करना। लेकिन ये मनोरंजन केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि इस मनोरंजन के द्वारा सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात फिल्मों का निर्माण की जो दिशा व दशा है वह पॉजिटिव एस्पेक्ट में होना चाहिए, न कि केवल लाभ कमाने का साधन होना चाहिए। अगर हम दूसरे पॉइंट्स पर बात करें तो वर्तमान समय में फिल्में भाषा का, खास करके हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो कि हमारी कल्पना से भी परे है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में निर्माण हो रही वे फिल्में, जिन फिल्मों का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर होता है, उनके द्वारा भारत की न केवल संस्कृति का बल्कि भाषा का भी अत्यधिक प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में लगभग 183 देशों में हिंदी सिनेमा का प्रचार और प्रसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, जो कि न केवल हमें या हमारे देश के लिए मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं, बल्कि कला के साथ साथ भाषा, विशेषकर हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मनोरंजन, भाषा के साथ साथ फिल्म निर्माण का तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू ये है धनोपार्जन। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज जब किसी उद्देश्यों को लेकर चलता है तो उसका यह मूल उद्देश्य होता है कि उस विषय वस्तु से या फिल्म के माध्यम से कुछ अर्थ का अर्जन किया जाए, अर्थात लाभ कमाया जाए। वर्तमान समय में भारतीय फिल्मों के द्वारा आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बॉलीवुड, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक नगरी के साथ साथ फिल्म सिटी के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ से फिल्मों के निर्माण के माध्यम से न केवल भारतीय मुद्रा का अर्जन तो देश में हो ही रहा है, बल्कि विदेशी मुद्रा का भी अर्जन फिल्म निर्माण के माध्यम से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मनोरंजन, अर्जन और भाषा के प्रचार और प्रसार के साथ साथ अगर चौथा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब फिल्म का निर्माण किया जाता है तो उसकी शूटिंग के समय आप देखते होंगे कि फिल्मांकन के समय यह ध्यान दिया जाता है कि फिल्म में सुंदर दृश्यों का समावेश किया जाए, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे आर्टिफिशियल। देश समाज की एक स्वच्छ आदर्श छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास सदैव ही फिल्मों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि इस प्रस्तुति में अक्सर यूटोपिया या ख्यालों की दुनिया या सामान्य भाषा में कहें तो अत्यधिक हाइपर या बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह प्रस्तुति यह फिल्मांकन सत्यता से पूरी तरह परे है हम यह भी नहीं कह सकते। इसी के साथ साथ फिल्म के अगले एस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि इस देश में समाज में या व्यक्ति में या दुनिया या ब्रह्मांड में जो भी कोई व्यक्ति है वस्तु है उसके एक ही पक्ष नहीं होते हैं। कुछ पक्ष हमारे लिए सकारात्मक होते हैं अर्थात व्यक्ति समाज के लिए लाभदायक होते हैं, वहीं पर कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जिनकी स्वीकृति भले ही एक आदर्श समाज न दे लेकिन उस लाभ को पाने के लिए हमें कुछ हानियां भी उठानी पड़ती हैं। इसी संदर्भ में हम कहें तो हम भारतीय फिल्म या फिल्मों के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं तो अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो फिल्मों का सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है तो सबसे पहला ये है यूटोपिया, जिसे हम शब्दकोश की भाषा में कहते हैं ख्यालों की दुनिया। अक्सर ये देखने में आता है कि फिल्मों के निर्माण के समय फिल्मांकन वास्तविकता से कहीं ज़्यादा प्रस्तुत किया जाता है अर्थात फिल्मांकन को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण इसका कुप्रभाव हमारे युवा वर्ग पर पड़ता है और वह वर्तमान स्थिति को या रियल सिचुएशन को जाने बिना कल्पना के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने लगती है, जिसके कारण आगे चलकर युवा वर्ग की कल्पना शक्ति प्रभावित होती है। दूसरा सबसे जो गंभीर नेगेटिव एस्पेक्ट है वह है मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव। मैंने बताया कि चूंकि फिल्में अक्सर फिक्शन ड्रामा ख्यालों की दुनिया बहुत से विद्वान लोग इसे बुद्ध का बक्सा भी बोलते हैं अर्थात फिल्मों के माध्यम से हमारे अंदर एक प्रोडक्शन क्रिएट हो जाता है अर्थात हम एक ऐसी कल्पना लोक में जीने लगते हैं कि जब सच्चाई से हमारा वास्तविक आमना सामना होता है तो हम यह पाते हैं कि हमारी प्रोडक्शन की जो थाट थी जो हमारी काल्पनिक सोच थी और व्यवहारिक सोच में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए भी कहा भी जाता है देर इज ए वास्ट वेरिएशन बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। तो कहने का भावार्थ यह है कि फिल्में हमें अत्यधिक कल्पनाशील बना देती हैं और इसी के साथ साथ फिल्मों का एक जो बहुत ही अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव खास करके हमारे किशोरा वर्ग पर पड़ रहा है वह है फिल्मों में दिनों दिन नग्नता या पोर्न जैसे विषय वस्तु को आधार मान करके अश्लीलता को बढ़ावा देना या अश्लीलता का चित्रांकन करना। वर्तमान स्वरूप में या कहें 2010 से अब तक, अब इस समय में फिल्मों में एक नवीन ट्रेंड चला है वेब सीरीज का, यानी एक कथनांक को कई भागों में दिखाना। अगर हम इसके फिल्मांकन पर ध्यान दें तो आपको यह देख करके घोर आश्चर्य होगा कि भारतीय समाज फिल्मों के द्वारा या फिल्मों के माध्यम से या फिल्म भारतीय समाज को किस दिशा में ओर लेकर जा रही है यह कल्पना से भी परे है, और इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल युवा वर्ग पर बल्कि हर वह व्यक्ति जो फिल्मों को एक मनोरंजन के साधन के रूप में देखता है इस पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो संक्षिप्त में हम यह कहें कि जहां फिल्मों के कुछ लाभ हैं वहां हानियां भी कम नहीं हैं। इसी संदर्भ में इस परिचर्चा या विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए हम निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे कि यदि हम फिल्मों की विषय वस्तु का विश्लेषण करें तो यह देखते हैं कि फिल्म जहां समाज का एक नवीन एस्पेक्ट है, नवीन दृष्टिकोण है, नया आयाम है, या मनोरंजन का एक ऐसा साधन है जो हमें एक नवीन मूल्यों से अवगत करा रहा है, वहीं पर इसकी हानियां भी कम नहीं हैं। और अगर दोनों मूल्यों का एनालिसिस किया जाए तो हम यह पाते हैं कि जहां फिल्मों के द्वारा एक ऐसा व्यवसाय का सृजन हुआ है जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन वहीं पर इस फिल्म के द्वारा भारतीय समाज का नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक मूल्यों का पतन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फिल्में परिवार को तोड़ने में ही कम भूमिका नहीं निभा रहे हैं, खास करके वर्तमान स्वरूप में एकांकी परिवार को बढ़ाने में फिल्मों की भूमिका अत्यधिक रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि आप लोगों को जो अपने वॉइस के माध्यम से और अपने इस लेख के माध्यम से मैंने आप लोगों को चलचित्र, फिल्म, मूवी, विषय वस्तु या कंटेंट के बारे में जो भी जानकारियां आपको दी गई हैं, आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आई होंगी। यदि इस विषय वस्तु के बारे में या इस परिचर्चा के बारे में किसी छात्र को कोई बाधा महसूस हुई हो, कोई कंटेंट का कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, तो वह बगैर किसी संकोच के, विदाउट एनी हेजिटेशन के, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस विषय में अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद। अब अभी वाला निकालता, देख देख अभी वाला कहाँ निकालवा दे।